أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ ایک خطبے میں میں نے نفس مطمئنہ کا مضمون شروع کیا تھا اور سفر کے دوران کیونکہ اور بھی بہت سی باتیں درپیش رہیں اس لیے وقتی طور پر اسے منقطع کرنا پڑا تھا اور خیال تھا کہ واپس لندن پہنچ کر پھر میں آپ سے نو اس مضمون کو اٹھاؤں گا, لیکن کچھ اور بہت سی ایسی باتیں اس سال کے لیے جمع ہو چکی ہیں جن کا عمومی تذکرہ ضروری ہے. بس پہلے میں ان سے فارغ ہوں, پھر انشاءاللہ پورے اطمینان کے ساتھ نفس مطمئنہ کی باتیں کریں گے. مشکل یہ ہے کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اس سال کے ختم ہونے میں اور صرف چند سال باقی ہیں اس صدی کے ختم ہونے میں. کچھ تیاریاں ایسی ہیں جن کا اس سال کے اختتام سے تعلق ہے, کچھ ایسی ہیں جن کا صدی کے اختتام سے تعلق ہے اور اگلی صدی میں دور تک انہوں نے اثر انداز ہونا ہے. ان دونوں باتوں کا فکر بھی ہے اور ان میں توازن بھی رکھنا پڑتا ہے. اور اس پہلو سے اب میں اس سال کی ایسی باتیں کروں گا جن کا بالآخر انشاءاللہ اگلی صدی پر ضرور اثر پڑے گا, اور وہ ہے تبلیغ کے اور تربیت کے وہ کام جن کا تبلیغ سے تعلق ہے. خصوصیت جماعت احمدیہ میں تبلیغ کے میدان بہت وسیع ہو گئے ہیں اور وہ باتیں جن کا پہلے خواب و خیال میں بھی تصور نہیں آ سکتا تھا اب حقیقت کے طور پر ہمیں سامنے رونما ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. ایک زمانہ تھا, بہت پہلے کی بات ہے, کہ میں سوچ کر خواب میں چٹکارے لیا کرتا تھا کہ کبھی 100,000 ایک سال میں بھی ایم ڈی ہوں گے. اب یہ 100,000 تو لگتا کہ سامنے جو ہی پڑے ہیں, سامنے بالکل بکھرے پڑے ہیں. اب ملینز کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. وہ ممالک جہاں چند ہزار کے قصے ہوتے تھے تو بہت فخر سے لوگ سر اونچا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں اب سینکڑوں سے نکل کر ہزاروں میں باتیں شروع ہو گئی ہیں. اب وہ لاکھوں سے نکل کر اب وہ 500,000 کی باتیں کر رہے ہیں. اس سال 500,000 تو ہمارا ہونا چاہیے. تو اتنی تیزی سے اللہ تعالیٰ نے پیمانے بدلے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, اور جس تیزی سے پیمانے بدل رہے ہیں اسی تیزی سے ذمہ داریاں بھی ساتھ بڑھ رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ مجھے آپ کو بتانا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے. یہ ذمہ داریاں اگر سلیقے کے ساتھ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو جتنا چاہے معاملہ پھیلتا چلا جائے, آپ کی وسعت بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بڑھائے گا اور ان پھیلتے ہوئے کاموں کو آپ سمیٹنے کی نئی طاقتیں اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں گے. یہ وہ مضمون ہے جس کے لیے مجھے آپ کو کئی دفعہ بار بار توجہ دلانی پڑتی ہے. خصوصاً جرمنی کے دورے میں جہاں جرمنی کو مجھے بہت سمجھانا پڑا, وہ بعض باتوں میں گھبرا گئے تھے کہ ہم اتنا بڑھ رہے ہیں, اتنا پھیل رہے ہیں, کریں گے کیا, سنبھالیں گے کیسے. جب ان کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ طریقہ ہے سنبھالنے کا, تو سارے مطمئن सब कुछ हुए और जिन्होंने अमल किया वो रिपोर्टें भेज रहे हैं कि तो कुछ भी नहीं है। खुदा तआला ने जो जिम्मेदारियां डाली हैं वो समझाई भी हुई हैं, कुरान करीम में उसके तस्करे मौजूद हैं और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर अमल करके दिखा दिया। बस सारी दुनिया के इस्लाह और तरबियत और तबलीग के प्रोग्राम हों और हम कुरान और रसूल की सुन्नत से ताल्लुक काटकर अपनी अकल से उनको सुलझाने की कोशिश करें तो हो नहीं सकता, नामुमकिन है। वो खुदा जिसने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाया है उसी की ताकत में है कि इस दौर में लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही के नज़ारे भी दिखाए और हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम के गुलामों को तौफीक बख्शे कि वो उन वादों को पूरा करने में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें जिनका वादा मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिनके आखिरीन गुलामों को खुदा ने यह एजाज बख्शना था कि उनके जरिए ये अजीम शान वादे पूरे किए जाएं। बस होने तो हैं और लाजमन होंगे लेकिन सबका हिसाब से नहीं होंगे कि आज 100 का इजाफा हो कल 1000 का या 500 का, वो दुगने वाला हिसाब ही है तो चलेगा और उसी से हम इंशाल्लाह बढ़ती हुई दुनिया के कदम रोक लेंगे और इनसे आगे निकलकर इनको घेरा डाल सकते हैं। अगर ये दुगने का निज़ाम आप ना चलाएं तबलीग में और तरबियत में तो नामुमकिन है कि जमात अहमदिया अपनी मौजूदा तादाद के बावजूद दुनिया तो दरकिनार किसी एक मुल्क को भी फतह कर सके। पाकिस्तान की आबादी भी आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है और वो आपको तादाद के लिहाज से इतने हकारत से नीचे मुंह करके देखते हैं जैसे कोई कीड़ा जमीन पर चल रहा हो। और वाकईतन उन मौलवियों के दिमाग में जो तकब्बुर है वो इसी वजह से है, आप छोटे बेमानी बेहकीकत दिखाई देते हैं उनको, वो समझते हैं एक पांव उठाने की बात है हम उनको कुचल देंगे। हुकूमतों में बड़ी बड़ी ताकतें आ चुकी हैं, उनके हथियार बदल चुके हैं, उनको बैरूनी कुवतों के सहारे हासिल हैं, बस अगर वो गैर मामूली तौर पर मुखालफत नहीं करते तो उनकी कोई शराफत नहीं, अल्लाह ताला की तकदीर है जिसने उनके हाथ रोके हुए हैं। और अगर शराफत की वजह से है तो फिर अल्लाह उनको जज़ा भी बख्शता है, दोनों सूरतें मुमकिन है। मगर शराफत हो या ना हो, हजरत मूसा को खुदा ने किस शराफत के नतीजे में बचाया था? फिरौन उसकी कौम में तो कोई शराफत नहीं थी, उन्होंने तो हर कीमत पर उनकी पैरवी का फैसला किया था, उनको पीछे से जा पकड़ने के अहद बांध कर निकले थे और बड़ी ताकत और बड़े गैर मामूली दबदबे के साथ हजरत मूसा के चंद गुलामों पर जो आपके पीछे चल रहे थे उन पर हमला करके उनको नेस्त नाबूद करने के इरादे किए हुए थे। क्या हुआ उनका? वो दो लहरें जो दोनों तरफ से उठी हैं पहाड़ों की तरह, उन्होंने ही हजरत मूसा और आपके साथियों को पना दिए। वो लौला दफुल्ला नासाबाद हमे बाद, ये मजमून था जो सिखाया गया कि बाद वक्त में मुखालफतों की बड़ी ताकत पर पहाड़ों की तरह उठती हुई लहरें दिखाई देती मगर खुदा उनको आपस में टकरा देता है, उनके साए तले से अपने मासूम बंदों को गुजार देता है और जो दूसरे गुजरने की कोशिश करते हैं वो उन पर जा पड़ती हैं और उनको सफेहस्ती से मिटा देती हैं। बस वो बातें जो खुदा ने जाहिरी शक्ल में या जाहिरी शक्ल से मिलती जुलती सूरतों में हमें कुरान में दिखा दी कि हम पहले ये करते रहे हैं, वही मजामीन है जो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। और जमात अहमदिया की हिफाजत का इन लोगों की ये जो जमात की दुश्मनी का इरादा किए बैठे हैं कस्में खाए बैठे हैं उनकी शराफत से कोई ताल्लुक नहीं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुदा ने जो हिफाजत दी है बाज़ दफ़ा मुशरिकों को मुशरिकों के खिलाफ खड़ा कर दिया, इसको हाथ नहीं लगाना ये हमारी पनाह में है। तो वो मुखालफाना लहरें तो अपनी ज़ात में कोई नहर रहम नहीं रखती मगर उनका खुदा तआला की तरफ से आपस में तवाज़ुन ऐसा कायम करना ये एजाज हुआ करता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ताइफ से वापसी पर एक मुशरिक सरदार ने अपनी हिफाजत का ऐलान किया करके पना दी اور وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تابع تھا اور مشرکوں کو مشرکوں سے لڑا کر حضرت موسیٰ کی طرح بیچ سے ایک راہ نکالی جا رہی تھی, اس لیے اس میں کوئی بھی مذاکرہ نہیں تھا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ وہ مضمون ہے جس کے نتیجے میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان میں بھی اور باہر بھی آپ کی حفاظت خدا فرما رہا ہے, لیکن جہاں شرافت دکھائی دے, اور شرافت کو اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے, وہاں ہماری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے جو ممکن ہے دعائیں بھی کریں اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ بھی دنیا کے طور پر ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. بس ایسے ممالک پاکستان کے علاوہ بھی ہیں جہاں بعض مذہبی امور کے وزیر, جن کو سعودی عرب سے دنیاوی طاقت ملتی ہے اور مالی طور پر بھی ان کو طاقت عطا ہوتی ہے, وہ انصاف کے معاملے میں جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہوں نے احمدیوں کو کہا ہے کہ بالکل فکر نہ کرو, ہم جانتے ہیں کہ آپ سچے لوگ ہیں, اس لیے جو کچھ بھی سیاسی تقاضے ہوں ہم آپ کے ساتھ آپ کی مدد پر ہمیشہ تیار رہیں گے, اور کسی فساد کو اپنے ملک میں جاری نہیں ہونے دیں گے. اور اسی طرح وہ اپنے وعدوں پر قائم ہیں, میرے ساتھ بھی وعدوں کے رابطے ہیں, اور میں حیرت سے دیکھتا ہوں ان کو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری حفاظت کے لیے انہی لوگوں میں سے نیک نفس لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے, اور ان کے لیے پھر ہم دعائیں کرتے ہیں, پھر وہ بعض دفعہ اپنے حق میں ان کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں. تو اس طرح عالمی طور پر جو خدا تعالیٰ کے جو فضل جاری ہو رہے ہیں ان کو سمیٹنے کے انتظام بھی اللہ کر رہا ہے. اس کی حفاظت کے بغیر ہمیں ایک لمحہ کی بھی کوئی حفاظت حاصل نہیں, ہر جگہ ہمیں میڈیامیٹ کیا جا سکتا ہے, ہماری کوئی طاقت نہیں. جو پہلی نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہمیں دنیا کی طاقتیں ملنے والی ہیں, مگر ان طاقتوں سے میں خوف کھا رہا ہوں. ان کو اس طرح ہرس کی نظر سے نہیں دیکھ رہا جس طرح آپ کے ذہن میں خیال ہوگا کہ ہم بعض ملکوں میں طاقت حاصل کر لیں گے. مجھے ان طاقتوں سے ڈر ہے کہ کہیں ان طاقتوں کے سہارے میں ڈھونڈنے لگیں, کہیں آپ کے دماغ میں یہ کیڑا نہ داخل ہو جائے کہ اب تو ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں, حکومتیں ہمارے ساتھ ہیں, اب ہمیں کیا پرواہ ہے. وہ وقت ہے سر جھکانے کا, وہ وقت ہے خدا کی توحید کے گانے گانے کا, وہ وقت ہے کہ آپ خدا کے حضور آپ کی روح سجدے کریں اور انکار کر دیں ان طاقتوں کا جو بظاہر آپ کے لیے ہی قائم کی گئی ہیں. ان معنوں میں انکار کر دیں کہ خدا ہمیں ان پر کوئی بھروسہ نہیں, جب یہ نہیں تھی اس وقت تو نے ہمیں یہاں تک بڑھا پہنچایا ہے, تو نے ہمیں بڑھایا ہے, اب یہ ہیں تو ان کے ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تیرے بندے ہیں, تیرے ہی رہیں گے. بس ان طاقتوں کو اور جھکا اپنی توحید کے سامنے, یہ تیری شان ہے. مگر ہمارے دماغ میں ایک ذرہ بھی اس تکبر کے غرور کا, تکبر اور غرور کا کیڑا نہ گھسنے دے کہ ہم سمجھیں کہ اب تو فلاں ملک بھی ایم جی ہو گیا اور فلاں ملک بھی ایم جی ہو گیا ہے, اب ہم دیکھیں گے کوئی ہماری مخاطب کیسے کرتا ہے. یہی ملک جو ایم جی ہوں گے ان سے خطرات درپیش ہوں گے. یہاں سیاست اور مذہب کے آپس کے توازن میں کئی مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے. خلافت کا ان علاقوں سے تعلق کے سلسلے میں کئی مسائل درپیش ہوں گے, اور بہت الجھنیں ہیں جہاں سے ہمیں, جن سے ہمیں گزرنا ہے. اس لیے یہ خیال کہ ہمارا کوئی ایسا رستہ ہے جس کے بعد پھر سیدھا سادہ دوڑ کا ستھرا رستہ شروع ہو جائے گا اور رستے کے مشکلات کے پتھر ہٹا دیے جائیں گے, یہ بالکل غلط خیال ہے. یاد رکھیں خدا کی راہ میں مشکلات آپ کی حفاظت کرتی ہیں, اگر یہ مشکلات نہ ہوتی تو آج سے بہت پہلے آپ فنا ہو چکے ہوتے. یہ مشکلات ہی ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے سے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو اس طرح ظالمانہ طور پر دیکھتی ہیں کہ آپ کو کھا جائیں گے. یہی مشکلات اور ان کا یہ رویہ ہے جو آپ کو خدا کی طرف جھکنے پر مجبور کرتا ہے, آپ اس کی طرف دوڑتے ہیں. بس یہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ کو تقویٰ عطا کر رہے ہیں, آپ کو مزید ترقیات ان مشکلات کے وجہ سے اس طرح ملتی ہیں کی وجہ سے इस तरह मिलती हैं कि जब आप इनसे नहीं डरते और अल्लाह का खौफ रखते हैं तो इन खौफ से दुश्मनी की बजाय फैज के चश्मे फूट पड़ते हैं। आज हमारी सवाल जो आपकी जो उर्दू की मजलिस थी उसमें एक दोस्त ने इसी किस्म का एक सवाल किया, उसको मैंने समझाया। मैंने कहा अब ये ख्याल दिल से निकाल दें कि जमात अहमदिया की कोई ऐसी तरक्की होगी कि जिसके बाद ये मुश्किलात हट जाएंगी, तरक्की के नतीजे में हमारी आजमाइशें बढ़ेंगी और लाजिम है कि हम इन आजमाइशों पर इस तरह पूरे उतरें कि हमारे सर मजीद झुकते चले जाएं और अल्लाह ताला के हजूर ये इकरार करने लगें कि आज जो तूने हमें तरक्की की जजा दी है हम उस पर तेरा शुक्र अदा कर नहीं सकते, हम इन ताकतों का एहतराम तो करते हैं क्योंकि तेरी बिना पर हमें मिली है, लेकिन इन पर बिना नहीं करते, बिना तुझ पर है। अगर ये करेंगे तो खुदा का ये कानून आपके हक में लाजिमन जारी होगा, लाइन शकर तुम लाजीजन न कुम या इन शकर तुम लाजीजन न कुम लाइन शकर तुम लाजीजन न कुम। याद रखो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं जरूर तुम्हें बढ़ाऊंगा। उन साहब का सवाल तो इस तरह शुरू हुआ था कि इतने खुदा के फजल हो रहे हैं, अब पता नहीं हम शुक्र अदा करते भी हैं कि नहीं, हम कैसे अपने आप को शुक्र पर आमादा करें। मैंने उनसे कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप शुक्र ना करते तो ये तरक्यात कैसे नसीब होती, क्योंकि कुरान करीम की इस आयत ने यह समझाया है कि तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें तरक्यात दूंगा, अगर तरक्यात दे रहे हैं तो लाजमन शुक्र करते। बस आदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो खुदा तआला के फजलों का फैज एक समंदर की लहरों की तरह उठाया और सारे जज़ीरे अरब को उसने गर्क कर दिया, ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का शुक्र था। सारी सारी रात आप खड़े होकर खुदा का शुक्र अदा करते थे, आपके पांव सूज जाया करते थे और जितने फजल बढ़ते थे उतना शुक्र और बढ़ता चला जाता था। तो खुदा ने तो दिखा दिया कि एक शुक्र करने वाला बंदा था, एक बंदे के शुक्र ने इतने फैज अता किए थे, लेकिन उसी के शुक्र का फैज है जो आज हम खा रहे हैं और उसी के शुक्र का फैज है जिसने हमें शुक्र के सलीके बख्शे। बस ये यकीन करके इस राह पे आगे बढ़ें कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के कैसे शुक्रगुजार बंदे थे, कभी कायनात में ऐसा शुक्रगुजार बंदा नहीं देखा। जितनी तरक्यात अता हुई है इस शुक्र को कबूल करने के नतीजे में हुई है और अब असर नौ जो ये दौर चला है अब भी शुक्र के कबूलियत का दौर है। आपको जो तौफीक मिल रही है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की वजह से भी मिल रही है, बस अपने शुक्र को बढ़ाएं, अपने शुक्र की हिफाजत करें। जब आप शुक्र की हिफाजत करेंगे तो दुनिया की ताकतें आपको मामूली दिखाई देंगी। वो इत्तफाकन हादसात हैं जो शुक्र के नतीजे में आपके कदमों पर गिराए गए हैं, मगर इस काबिल नहीं कि आप उनके कदमों पर गिरें। बस दुनिया की ताकतों को कोई अहमियत इस पहलू से ना दें कि गोया वो आपका सहारा है, इस पहलू से अहमियत दें कि आपके कदमों का फैज है वो और अल्लाह ताला ने आपके शुक्र को कबूल किया जो ये ताकतें आपको अता दी। फिर अभी से उनके लिए दुआएं शुरू करें और अभी से जहां जहां ये तजर्बे हो रहे हैं वहां उनकी हिफाजत के, उनकी तरबियत के वो सारे सामान करें जो आपके दिमाग में आ सकते हैं और पूरी कोशिशें कर देखें, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ना है और फैलना है और जब ये सियासत में तब्दील होंगी तो जो बड़ी नरम और नरम खू और गुदास पहलू रखने वाली कौमें हैं इनसे सियासत उभरेगी तो बड़े खौफनाक चेहरे उसके जाहिर होंगे। बस मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं और आइंदा सदी में ये बातें जो है मैं कह रहा हूं ये वहां भी असरअंदाज होने वाली हैं, लेकिन इस गुज़श्त आइंदा जो दो तीन माह रह गए हैं इनके हवाले से मैं आपको अब मैं समझाता हूं कि देखो ऐसे मुल्क हैं जहां खुदा के फजल से इस किस्म की रफ्तारों में तेजी आ रही है। इन ममालिक में से बाज लोगों ने इन तरक्यात को अपनी कोशिशों का नतीजा समझा और अपनी कोशिशों पर बिना की नए आने वालों ने, और उनको मैंने समझाया, उनसे लंबी गुफ्तगुएं हुई। एक ऐसे ही मुल्क के नुमाइंदे थे जिनको मैं बार बार ये समझाता रहा कि देखें आप ताकतवर हैं मुझे पता है, मगर जब अहमदियत कबूल करके आप उस पर साबित कदमी दिखाएंगे तो ये ताकतें आपके कुछ भी काम नहीं देंगी, मुखालफत और हसद की रौ उठेगी और वो आपको दबाएगी। उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला पर और उसकी कुदरत पर रहने साथ, और ये अज़्म आपके काम आएगा कि हमने अपने मकसद से नहीं हटना, और दुआएं काम आएंगी। वो सारी बातें मेरी सुनते थे, और चूंकि दुनिया से निकल के आए थे, दुनिया की सियासतों के अपने तरफ से मालिक बने बैठे थे, तो जानते थे कि सियासत की के सरचश्मों पर हम काबिल लोग हैं। कोई हो कौन सकता है, वो हो कौन सकता है जो हमें इन सरचश्मों से जुदा करके अलग करें। उनको मैंने समझाया कि आप किन बातों में पल रहे हैं, हजरत सवाले को उस चश्मे से किसने हटाया था जिस चश्मे के सरदारों में आप शामिल थे, और कौम इकरार करती थी कि ऐ साले तू हमारे बड़े लोगों में से था, मगर जब खुदा की खातिर आप अल्लाह ताला की से वफा करते हुए कौम से अलग हुए तो कौम ने उनको छोड़ दिया, बल्कि उसी सरचश्मे पर हमला किया और ऊंटी की कूंछें काट दी जो वहां से पानी पिया करती थी। तो तरह तरह से मैंने उनको समझाया कि देखो अपनी ताकत पर इंसार ना करना, बहुत बड़ी कामयाबियां बज़ाहिर अल्लाह ने अता फरमाई हैं, मगर इनकी हिफाजत इसी तरह होगी जैसा मैं बता रहा हूं। और वो सुनते थे और कई उनमें से सर झुकाते थे अदब से, और आखिर में मैं ये देखता था कि इन बातों का एहतराम अपनी जगह लेकिन अपनी बड़ाई का यकीन अलग अलग। और चूंकि वो समझते थे कि इसको हम नेकी के रस्ते में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो उससे घबराते नहीं थे। तो मैंने उनके मुबल्ले को बाद में भी तवज्जो दिलाई, मैंने कहा देखो ये मैंने महसूस कर लिया है, मुझे फिक्र है इनका, अल्लाह ताला इनको अपने पनाह में रखे। चुनाचे वैसे ही वाकयात रूनुमा हुए, जहां सबसे ज्यादा तवक्कुआत थी बैतों की, वहां सबसे कम निकली, क्योंकि सियासी लिहाज से उनकी मुखालफत उठी हुई और मुखालिफ धड़े उठ खड़े हुए, और जब उन्होंने उनकी सियासत पर हमला किया जिसकी पनाह में वो थे, तो उस सियासत में उनको कोई पनाह नहीं थी। बस ये वो बात है जिसे समझाने की जरूरत है, बाकी किसी मुल्क में ये इन गलतियों का इयादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये लिखते हैं कि फलां जगह हमें इतने बड़े बड़े चीफ मिल गए, इतने मुल्क के बादशाह मिल गए, इतने मेंबर्स पार्लियामेंट मिल गए, तो आपकी तहरीर में बाज दफा उनकी बड़ाई का इस तरह जिक्र मिलता है जो शुक्र से अलग, गोया उनको खुदा के मुकाबले पर बुत बना रहा हो। बस ये मैं मुतवज्जे करना चाहता हूं सारी दुनिया में तरक्की पाने वाले ममालिक को कि हरगिज इनको वो अहमियत ना दें जो इनको बुत बना दें, इनकी इज्जत करें, इनका एहतराम करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वालों में से अदना के लिए भी उठ खड़े होते थे, मगर वो इज्जत इस बिना पर नहीं थी कि गोया उनसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम वाबस्ता है, इस बिना पर थी कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से वाबस्ता रहेंगे तो इज्जत पाएंगे। इन दो चीजों में बहुत फर्क है। बस पहली बात जो इस साल के ताल्लुक में और आइंदा सदी पर असरअंदाज होने वाली मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये बात है कि अल्लाह के फजल से हमें बहुत तरक्कियात मिल रही हैं। हर मुल्क का फर्ज है आने वाले को बताए और समझाए ये ताकतें तुम्हारे कौड़ी की भी काम नहीं आएंगी अगर तुमने इन ताकतों को खुदा के हुजूर सजदा रेज ना रखा और सहारा खुदा का ना समझा, इनको समझ लिया, अगर तुमने इनको सहारा समझा तो तुम्हारे सहारे टूट जाएंगे और फिर तुम्हारी ताकतें हमारे किसी काम की नहीं आएंगी। हो सकता यही ताकतें आलमी जमीयत की राह में हायल हो जाएं और फितने पैदा करने का मुझे बने। हो सकता है नई कौमें जो ज्यादा ताकत के साथ जमात में दाखिल हों वो उठ खड़ी हों और वो कहें कि हमें क्या जरूरत है एक मरकज की अतात करने की, हम निजामे जमात को समझ रहे हैं, हम अहमदियत को जानते हैं, इबादत करते हैं, यही हमारे लिए काफी है, इसलिए कोई जरूरत नहीं एक निजाम से बंधे रहें। और इस किस्म के फितने वहां जरूर उठेंगे, आप देखना आज नहीं तो कल ऐसे फितने उठाए जाएंगे, आज उनकी सरकूबी की समान करें, तब आप खुदा की आंख से देख रहे होंगे, तकवा की आंख है। इसलिए हिर्स के साथ नजर न डालें, खौफ से नजर डालें, तकब्बुर के साथ नहीं, रहम के साथ नजर डालें। देखें कि इन लोगों बेचारों को क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं, और उसका हल अभी से करें। जिस जो सबसे बड़ा हल यह है कि नए आने वालों को जाती तौर पर अल्लाह के ताल्लुक से मानना शुरू करें। जो भी इनमें से खुदा के साथ बांधा गया उसकी हिफाजत आप नहीं करेंगे, अल्लाह करेगा। और इसी तरीके से कौमों की हिफाजत हुआ करती है। कसरत से इनमें खुदा वाले पैदा करने लाजिमन पैदा करने पड़ेंगे, और उसके बगैर इन कौमों की हिफाजत मुमकिन नहीं है। उसके लिए अभी से, जैसा कि मैंने पहले बयान किया था, तरबियती इजलासों की और तरबियती क्लासेस जिनको कहते हैं अंग्रेजी में, मगर उर्दू में भी लफ्ज़ जारी हो गया है, तरबियती क्लासेस की के इजरा की जरूरत है। जिन ममालिक में उमदगी से हुआ है वो लिख रहे हैं कि खुदा के फजल से बहुत बड़ा फायदा पहुंच रहा है। जर्मनी के दौरे में भी मैंने यही महसूस किया कि जहां नए आने वालों में से आदमी चुने गए और उनको तरबियत देकर अपनी कौम के लिए मुकर्रर किया गया, वहां गैर मामूली तौर पर खुदा के फजल से बरकत नसीब हुई। सिर्फ तरबियत के लिहाज से नहीं, तबलीग के लिहाज से भी। उनमें अपनी कौम में तबलीग करने का नया जोश पैदा हुआ, उनको सलीका आया कैसे कौम को संभाला जाता है। अहमदियत से जाती वाबस्तगी के साथ जब उनको बताया गया कि देखो हर मुश्किल पर दुआ करनी है और देखना अल्लाह तुम्हारी कैसी मदद करता है, तो जहां जहां अल्लाह ने मदद फरमाई उनके हौसले बहुत बढ़ गए पहले से। तो वहां भी, यानी जर्मनी में भी, कामयाबी इसी बुनियादी बात को नसीब हो रही है जो कुरान ने हमें सिखाई थी। और इसीलिए मैंने वहां भी ये कहा कि कोई नई बातें नहीं है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये कुरान करीम ने सिखाई ही है। कुरान करीम ने हमें यह सिखाया कि जब कसरत से कौमें इस्लाम में दाखिल हो रही होंगी तो उस वक्त उनमें से वो लोग, कुछ लोग जरूर हिजरत सफर करके मदीने पहुंचें और वहां तरबियत हासिल करें और फिर वापस अपनी कौम में फैल जाएं और वहां जाकर वही तरबियत की बातें आगे करें। इस कुरानी तालीम में बहुत गहरी हिकमत है। मैं सोचता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि किस तरह उस जमाने में अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया का मुअल्लिम बनाकर सारी दुनिया को राम करने का तरीका भी साथ ही दिखा दिया। जब तक बैरूनी लोग किसी कौम को पैगाम देते रहते हैं वो पैगाम बैरूनी रहता है, जब उनमें से कुछ लोग उठ खड़े हों जो पैगाम समझने के बाद उसकी पैगाम की नुमाइंदगी खुद अपनी कौम में करने लगते हैं तो तब वो पैगाम बैरूनी नहीं रहा करता। अब जहां भी मैंने देखा है, वहां बॉस्नियन हो या अल्बेनियन हो या दूसरी कौमों से ताल्लुक रखने वाले लोग, जहां उन लोगों ने खुद हमारे इस तरबियती निजाम से फायदा उठाकर अपनी कौम में अहमदियत को जारी करने का इरादा किया, गैर मामूली बरकत मिली है। अरबों को जब अरबों से आवाज आई है कि हाँ ये हो रहा है, ये होना चाहिए, तो अरबों ने उसके मुकाबले पर उसमें फौरी तौर पर लबैक कहा है। जब तक पाकिस्तानी अरबों को पैगाम देते रहते थे, कबूल तो कर लेते थे लेकिन समझते थे कि ये और लोग हैं, हम और लोग हैं। लेकिन अरबों में ऐसे हैं खुदा के फजल के साथ जिनका दूर दूर तक असर है, क्योंकि उन्होंने अहमदियत को सच समझा, तकवा अख्तियार किया, अल्लाह ताला से उनका प्यार का ताल्लुक हुआ और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने गैर मामूली बरकत बख्शी। चुनांचे वही बात अरब अरबों से सुनते हैं जो पहले पाकिस्तानियों से सुना करते थे, और अरबों से सुनते हैं तो अपने घर की बातें मालूम होती हैं, बहुत ही मुस्कित रद्द अमल दिखाते हैं। चुनांचे बाद इलाकों में, मसलन मशरकी बर्लिन और उसके साथ ताल्लुक रखने वाले इलाकों में, ऐसे ही बाद मुख्तलिस अरब हमें अता हुए हैं अल्लाह के फजल के साथ, और उनके पैगाम का ऐसा असर है कि पिछले इस साल में अब तक 300 से जायद अरबों की बैतें हो चुकी हैं और वो आगे फिर इनसे सीख रहे हैं और आगे बात को बढ़ा रहे हैं। उनमें गैर मामूली खुदा के सूरत के साथ अहमियत से लगाव और वाबस्तगी पैदा हो रही है। तो सिर्फ बॉस्नियंस की बात नहीं, सिर्फ अल्बेनियन की बात नहीं है, हर कौम में जहां भी इस नुस्खे को आजमाया गया है, जो मैं आपको फिर समझा रहा हूं, मेरा नुस्खा नहीं, कुरान का नुस्खा है, यह नुस्खा हमेशा कारगर साबित होता है। इन लोगों में से आदमी चुने, उनको समझाएं। अब मदीने वाली बात आज के माहौल में समझनी चाहिए। मदीने से मुराद ये तो नहीं कि अब रब्बा मदीना बना हमारी हिजरत का, या अब लंदन मदीना बन गया सानी हैसियत से, तो सारी दुनिया से लोग यहां इकट्ठे हों। यहां भी जब तौफीक मिलती है तो इकट्ठे होते हैं, उसका अपना फैज पाते हैं वो। मगर मदीने से मुराद हर मुल्क का मरकज और उस मरकज के तरबियत याफ्ता लोग, जहां भी पहुंचकर डेरा लगाते हैं वहां मदीना बन जाता है। बस ये नामुमकिन है कि सब लोग जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पहुंचे, मगर फ्रैंकफर्ट वालों को ये तौफीक है कि वो मुख्तलिफ मराकज में पहुंचे, वहां हमारे मुरब्बी हों, वो उन मुकामी लोगों की तरबियत करें, और फिर आगे तरबियत की क्लासेस में वही साथ शामिल हों जो मुकामी लोग हैं, और उनकी आपस की दौड़ें करवाई जाएं। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको आइंदा दो तीन दो माह जो रह गए हैं उनमें कसरत के साथ इस्तेमाल करें और पेश नजर रखें, तो अल्लाह ताला आपकी अब तक की तबलीग को दुगना भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है जब वो चाहे। मगर जो जो मुजस्से का वक्त करीब आ रहा है, उसी निस्बत से हमें अपने काम की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है, और ये वो तरकीब है जो मैं आपको समझा रहा हूं सारी दुनिया के अहमदियों को, जहां भी वो हैं, इसको पहले से ज्यादा संजीदगी से इस्तेमाल करें। लेकिन पहली बात जो कही थी वो शर्त है इसकी कामयाबी की, अगर इस बढ़ने के नतीजे में आपको तकब्बुर हता होने की बजाय आजजी मिली है तो ये नुस्खे जरूर काम करेंगे। अगर तकब्बुर का कीड़ा आपके दिमाग में दाखिल हो गया तो नुस्खा बिल्कुल बेकार जाएगा, इस्तेमाल करके देख लें, आपकी तरबियत क्लासेस को कुछ भी बरकत नसीब नहीं होगी। बस इस वक्त में इसको इस्तेमाल करें तो बकिया वक्त में आपकी रफ्तार पहले से बहुत बढ़ जाएगी, और रफ्तार को अब इस तरह बढ़ाना है कि तरबियत साथ साथ उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही हो, और उसके लिए ये तरकीब है कि हर कौम के आदमियों को फौरी तौर पर मौलिम बनाने की जरूरत तवज्जो करें, साथ साथ वो अपनी कौम में पैगाम रसानी करें, और जाने से पहले आपसे अहद करके जाएं कि अब हमने अपनी तादाद को दोगुना तिगुना चौगुना बढ़ाना जरूर है, और ये भी तरबियत का हिस्सा होगा। तो अल्लाह ताला के फजल के साथ जो जो तरक्की होगी, तरक्की अपनी तरक्की के समान खुद ही करती चली जाएगी, और शर्त वही है कि इज्ज़त बढ़ रहा हो, दुआओं पर इंसार बढ़ रहा हो, जहां जहां अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियां अता फरमाई हैं वहां के मुरब्बी भी, वहां के कारकुन भी दिन ब दिन ज्यादा खुदा के हजूर झुकते चले जाएं, और याद रखें कि इन दुनियावी लोगों में हमारी कोई पनाह नहीं, ये हमारी पनाह लेने के लिए आए हैं, इनको पनाह दें, और इस पनाह के नतीजे में अल्लाह आपको पनाह देगा। इनको पनाह दें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक की पनाह, इनको पनाह दें कुरान करीम की तालीम की पनाह, और ये पनाहें इनको अता कर दें तो फिर देखें सारी दुनिया की पनाह का ये मोजी बन जाएंगे, अपनी कौम को भी पनाहें देंगे और बाकी दुनिया को भी पनाहें देंगे। तो ये दूसरी बात है जिसको आप पल्ले बांध लें और मेहनत के साथ इस काम में आगे बढ़ें। तीसरी चीज जिसका मैं जिक्र अमूमी तौर पर पहले करता रहा हूं, आज भी मैंने अपनी मजलिस में किया था, वो है फैज का पहुंचाना। ये जो कौमें आप में दाखिल हो रही हैं, साथ साथ इनको फैज पहुंचाना भी जरूरी है, और फैज पहुंचाने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके तो ऐसे हैं जहां बाज जगह इंतहाई कसमपकसी की हालत में बाज कौमें गुरबत और मसायब का शिकार हो चुकी हैं, वहां माजी तौर पर भी हमें जो तौफीक है मैं जरूर उनके लिए खर्च करना होगा, लेकिन ऐसी कौमें कम हैं। बहुत ऐसी हैं जो इस किस्म की माली इमदाद की जरूरत नहीं, की जरूरतमंद नहीं है, मगर इक्तसादी हालत को बेहतर कराने के लिए जमात को जरूर उनकी मदद करनी होगी। चुनाचे जिन कौमों का मैंने जिक्र किया है, इनमें बहुत से ऐसे हैं जिनको जर्मनी की खुशहाली की वजह से, जो एक गरीब मुल्कों से आकर जर्मनी में बसे थे, अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है कि अब वो चंदे दे रहे हैं और पूरे जोश से नहीं तो किसी हद तक वो माली निजाम का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन बाद उनमें से ऐसे भी हैं जो जोश में इतना बढ़ गए हैं कि पाकिस्तानियों को जो पैदाइशी अहमियत से पीछे छोड़ गए हैं और माली कुर्बानी में और आगे बढ़ गए हैं। तो फैज का जहां तक ताल्लुक है, दो तरह के फैज हैं। माली कुर्बानी की तौफीक बख्शना, यह सबसे बड़ा फैज है, और माली कुर्बानी से फायदा उठाते हुए अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना, ये निस्बतन अदना दर्जे का फैज है। और इस फर्क को मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के हवाले से आपके सामने रख रहा हूं। जब तक इन बारीक बातों को आप नहीं समझेंगे, आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि फैज कैसे करना है। लोग समझते हैं कि किसी को गरीब को पैसे दे दिए, यही फैज है। ये फैज नहीं, इससे बढ़कर फैज यह है कि वो जो मांगने वाला हाथ है उसको अता करने वाला हाथ बनाए। क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यदुल उलिया खैरु मिन यदिस सुफला, मिन यदिस सुफला। अल यदुल उलिया जो ऊपर का हाथ है वो निचले के हाथ से बेहतर है। आप निचले वाले हाथ को फैज क्यों दे रहे हैं, ऊपर वाले हाथ का फैज क्यों नहीं पहले देते? और ये फैज गुर्बत में भी अता हो जाता है। अजीम शान फैज है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर उस तरह जारी करें जैसे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों में जारी फरमाया, वो असाबुस सुफो सुफा जो मस्जिद के थड़ों पर पल रहे थे, गुर्बत से बाज दफा एक एक दो दो तीन तीन दिन की रोटी नसीब नहीं होती थी। जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलिया के फैज की बातें की तो जंगलों में निकल गए, कुल्हाड़ियां लेकर लकड़ियां काटी, उनको बेचकर जो हाथ आया वो गरीबों में तकसीम किया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो कि फकीरों को बादशाह बना दिया, गरीबों को इज्जत नफ्स बख्शी, उनको बताया कि तुम एहसान करने वाले हो, गुर्बत में भी एहसान कर सकते हो। तो सबसे पहले ये एहसान करें, गरीब कौमों को इज्जत नफ्स बख्शें। और ये हाल सारी दुनिया में बराबर चल रहा है। हिंदुस्तान में जो थरों के इलाके हैं वहां कसरत के साथ, खुदा तआला के फज़ल के साथ एमजी हो रहे हैं। मैं उनको लिखता हूं कि उनकी मस्जिद की जरूरतें पूरी करने में आप मदद करें, बेशक करें, मगर ये और उनकी इक्तसादी हालत बेहतर बनाने के लिए स्कीमें बनाएं। मगर उनके अमीर को भी, उनके गरीब को भी खुदा की राह में कुछ ना कुछ खर्च करने वाला जरूर बना दें। ये आपका सबसे बड़ा एहसान है जो उन पर होगा, जो आइंदा उनकी नस्लें संभालेगा। वरना अगर आपने सिर्फ उनकी गुर्बत दूर करने के लिए पैसे तकसीम किए या आटा तकसीम किया, तो आज उनकी एक गुर्बत दूर हो रही होगी, एक और गुर्बत में मुबतला हो जाएंगे, उनकी रूहें गुलाम बन जाएंगी, उनकी रूहों को हमेशा भिखारी बनकर हाथ आगे बढ़ाने की आदत पड़ जाएगी। उनकी अगली नस्लें किस काम की होंगी, अहमियत के किस काम आएंगे? बस तीसरा हिस्सा जो नसीहत का है वो फैज से ताल्लुक रखता है। अपने फैज को आम करें और वो फैज रसाम बने जो हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अपने गुलामों में फैज रसाम पैदा कर दिए और उनकी गुर्बत उनकी फैज रसानी की राह में हायल नहीं हुई। बल्कि ऐसे भी थे जिनको दुनिया नसीब हुई और अपने हाथों से बांट कर गरीब बन गए और गरीबी में भी फैज जारी रखे। तो जो नई कौमें आ रही हैं, अगर आप उनको ये फैज बख्शें तो आप देखें उनके सर एक पहलू से खुदा के हुजूर झुकेंगे, दूसरे पहलू से दुनिया के सामने सरबुलंद भी होंगे, अपने वजूद के सामने सरबुलंद होंगे। वो अपने नफ्स से कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। उनका वो हाल नहीं होगा जो कुरान करीम में लिखा है कि जब तुम उनको कुछ खैरात डालते हो तो उनकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वो लोगों को खैरात देंगे और शर्म से नहीं, बल्कि खुदा ताला के एहसान की याद से उनकी आंखें उठेंगी और रूह से जरेज होंगी, अपनी इन हालतों में शुक्र करेंगे और शुक्र के नतीजे में अल्लाह ताला उनको और ज्यादा बढ़ाता चला जाएगा। बस ये एहसान का ये पहलू है जिसको अव्वल तौर पर अपने सामने रखें। फिर दूसरा पहलू इक्तसादी हालत को बेहतर बनाने का भी है, जो हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा पहलू भूख को जब वो काटती हो उस वक्त मिटाने का पहलू है, जिसको कुरान ने अलग, जिसकी कुरान ने अलग तलकीन फरमाई है और उसका तबलीग से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए याद रखें, जब मैं ये नसीहत करता हूं तो तबलीग से जोड़कर इसको नहीं करना। भूखा तो भूखा है, खा वो हिंदू भूखा हो या सिख भूखा हो या मुसलमान भूखा हो या ईसाई भूखा हो। भूखे से उस तरह बर्ताव करें जैसे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखों से बर्ताव किया करते थे और नबूवत से पहले भी किया करते थे। बल्कि वही बर्ताव था जिसने आपके शोला नूर को एक ऐसा नूर बना दिया जिस पर आसमान से भी नूर नाजिल हुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से बहुत पहले का यह हाल था कि जो कुछ होता था गरीबों में तकसीम कर दिया। हजरत खदीजा से जो कुछ विषय में जो कुछ पाया आपने, पूछा कि तुम मुझे इस तरह दे रही हो कि वाकया तुम मुझे मालिक बना रही हो इतनी बड़ी दौलत। उन्हें कहा, हाँ मेरे आका यही है मेरा मकसद, आप इसके मालिक हैं। अरे उसने, अच्छा अगर मैं मालिक हूं तो मैं सारी दौलत तकसीम कर दे। उन्होंने सर झुकाया, ताइफ की। यही वजह है कि आखिरी उम्र तक 16 से हम खदीजा को याद करते थे, याद करते थे तो आंखों से आंसू जारी हो जाएगा। किसी यजीन दीजिए अपने खामन को अपना सब कुछ पेश किया और इस कामिल यकीन के साथ किया, अब ये वाकियातन मालिक है, जो चाहेगा इससे करेगा और खैर ही करेगा और मैं उसके साथ हूं। फिर आखिर उम्र तक वफा की। बस इस किस्म का फैज आप दुनिया में जारी करें, यानी गरीबों के लिए गुर्बत में मोहसिन बन जाएं। इस बिना पर नहीं कि अगर आप गुर्बत की का इजाला करेंगे तो वो एमडी हो जाएंगे। जो गुर्बत की इजाले की खातिर एमडी हुआ करते हैं वो एमडी राय नहीं करते थे लंबा से। आज मतलब हुआ, कल मतलब खत्म हो गया। बस इस गुर्बत के इजाले को मौलखतुल कुलूब के मजमून से मिलाएं नहीं, ये दो अलग अलग मजमून हैं। अलग अलग मजमून इसलिए हैं कि तारीफ़ कल्ब की शर्त यह है कि नए आने वाले लोग अपने दिलों की तारीफ के लिए कुछ ज्यादा एहसान चाहते हैं। वो एहसान का सलूक करो और ये एहसान अगर सच्चा हो और हकीकी हो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, तो थोड़ी देर के बाद ये एहसान के मोहताज रहते ही नहीं। ये मौलफतुल कुलूब एक दो साल की बातें हैं। वो गुर्बत का दूर करना जिसमें मजहब की कबूलियत आपकी नीयत में दाखिल हो, वो तलीफ कल्ब नहीं है, क्योंकि वहां चंद साल के बाद उनकी निचले हाथ की आदत पुख्ता हो जाती है। ऐसी कौमों को संभालने के लिए आपको फिर मुसलसल पैसे देने पड़ते हैं। जहां पैसे रोके वहां ये मुर्तद हो गए, या मुर्तद ना हुए तो अहमदियत में दिलचस्पी छोड़ दी। तो ये सारी बारीक राय हैं जो आपको लाजम समझानी है, क्योंकि इन राहों पर आपने चल के बहुत आगे बढ़ना है। तो जहां फैज का दूसरा पहलू इख्तियार करें, वहां इन दो चीजों में फर्क करें। गुर्बत के खिलाफ जहाद जहां तौफीक है, ताकत है, वहां दो तरीक से करें और उसमें मजहब को बीच में दखल ना देने दें। मजहब को दखल देने का मजमून भी आएगा, लेकिन वो अखरबा वाले मजमून में दाखिल है, उसकी बाद में करूंगा। पहली अमूमी बात कर रहा हूं कि जब आप गुर्बत दूर करें, फाका दूर करें, जैसे जाहिर में हो रहा है या आजकल फिरौलियों में बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है और बहुत से ममालिक हैं जो गुर्बत और फाकों का शिकार हैं, वहां फाकों के खिलाफ जहाद करना आपको इससे कोई गरज नहीं। कोई जहरिया है या मोमिन है, बंदा खुदा का है और मुसीबत में मुबतला है और अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि तुम मेरे बंदे हो तो मेरे बंदों की खिदमत करो। बस जितनी तौफीक है वो करें और वहां भी साथ साथ दूसरा पहलू ये पेश नजर रखें कि उन लोगों को अगर अपने पांव पर खड़ा करने की कोई कोशिश मुमकिन है तो उसको फौकियत दें। हिंदुस्तान में ऐसी एक तहरीक चल रही है, उसमें भी हम हिस्सा ले सकते हैं। जहां तक मुझे याद है, मैंने हदायत की थी कि मेरे और मेरे सब बच्चों की तरफ से उसका मेंबर बन जाना चाहिए हमें, और उम्मीद है मुबारक जफर साहब ने जो मेरे यात्री अकाउंट्स को भी संभाल रहे हैं उन्होंने इस पर अमल किया होगा, मगर अगर वो भूल गए तो अब फौरन करें। वो स्कीम ये है कि 3 पाउंड गालबन या कुछ लगभग रकम फी महीना देनी पड़ती है, और ये जो अंजुमन बनी हुई है ये गरीब मुल्कों में पैसे नहीं बांटती, गंदम नहीं बांटती, बल्कि उन जराए को मुहैया करती है जिनके जरिए वो खुद गंदम पैदा कर सके। वो जराए मुहैया करती है जिनके जरिए वो खुद अपने लिए पानी निकाल सके जमीन से। वो जराए मुहैया करती है, वो तरीके सिखाती है जिनके जरिए वो अपने लिए चावल पैदा कर सके। तो बहुत एक बाइज्जत और अजमत वाली तहरीक है, और मैं इससे बहुत मुतासर हूं, क्योंकि मेरे नजदीक इस्लाम की तालीम का एक छोटा सा शोशा है जो इन्होंने अपने खुद इख्तियार कर लिया है। मैं इस्लाम यही तालीम देता है, जैसा कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बारह आपके सामने ये मज़मून खुद पर चला जा रहा हूं। बस जमात अहमदिया को भी इस किस्म की तहरीकात को अपने अपने मुल्कों में जारी करना चाहिए, जहां गुर्बत को आपकी जरूरत है, जहां गुर्बत को इस तरह दूर किया जा सकता है कि वो अपने पांव पर खड़ी हो जाए। और सबसे ज्यादा दर्दनाक हालत गुर्बत की कुरान करीम यही बयान फरमाता है कि तामुन फी योमिन मस्बगत फी योमिन जी मस्बगत यतीमन जा मकरबा और मिस्कीनन जा मतरबा। तो जा मतरबा की तरफ तवज्जो की जरूरत है। जा मतरबा का मतलब यतीमन जी मकरबा से मुराद वो हैं जिनके अकरबा हैं और आप समझते हैं कि वो इनका ख्याल रख रहे होंगे, और अकरबा ख्याल नहीं रख रहे, बस आपको आगे बढ़कर उनके अकरबा बनना होगा। और जी मतरबा वो लोग हैं जिनकी टांगें जवाब दे गई हैं, उन्हें खड़े होने की ताकत ही नहीं रही, वो मिट्टी में मिल गए हैं, ना उनकी इज्जतों का कोई ख्याल रहा है, वो मजबूर हैं भीख मांगने पर अपनी बका के लिए, वो मजबूर हैं कि लोग उन पर रहम करें, उनको कुछ उनकी झोली में कुछ डाल दें। इनका इलाज यह है कि इनको मिट्टी में से गिरे पड़ों से को उठाएं और अपनी टांगों पर खड़ा करें, इनको टांगे दें। ये वो मजमून है जो इस दूसरे हिस्से में मैं आपके सामने खोल रहा हूं कि ये फैज भी जमात अहमदिया ने जरूर देना है। जहां जमात अहमदिया बरह रास्त इन चीजों में हिस्सा नहीं ले सकती, वहां इस किस्म की दूसरी तहरीकों से, जैसा कि इंग्लिस्तान में ये तहरीक चल रही है और मैंने अर्ज किया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने पैगाम दे दिया था वारिस जफर साहब को कि मेरे सारे मुझे मेरे बच्चों को इसमें शामिल करने हैं। जहां दूसरे अहमदी शामिल हो सकते हैं अपने अपने मुल्कों में, वो बेशक उनमें हों, क्योंकि अगरचे ये तहरीक खुद मुसलमान नहीं है मगर काम वो कर रही है जो मुसलमानों को करने चाहिए। और जहां तक मैंने तहकीक की है ये इस जरिए से ईसाइयत नहीं फैलाते, बल्कि सिर्फ इंसानी कदरें हैं जिनके पेश नजर ये काम करते हैं। बस इस पहलू से इनसे तावन करना भी ऐन कुरान के मकासद के मुताबिक है। तावन बिर व तक्वा में और क्या बातें हैं, नेकी के मामलात में जब हम गैरों से तवक्को रखते हैं वो हमसे तावन करें तो हम क्यों ना इनसे तावन करें, अगर नहीं करेंगे तो ये फिर हम गैरों से भी तवक्को नहीं रख सकते। तो आप इंग्लिस्तान वाले भी और दूसरी जगह भी जिनको भी तौफीक है वो ऐसी तहरीकों में भी शामिल हों जो खालिसतन लिल्लाह खुदा के बंदों की खिदमत करने वाली तहरीकें हैं। और दूसरे ममालिक में जहां जहां भी जमात को तौफीक है वहां इस नौयत की तहरीकें बनाएं, और ऐसे लोग मिलेंगे आपको बूढ़े वगैरह जो दूसरे कामों में मसरूफ ना हों, उनको अलग इस काम के लिए किया जा सकता है। जगह जगह वो ऐसी तहरीकात चलाएं जिनमें सिर्फ अहमदी का दाखिल होना जरूरी नहीं है। ये बात है जो खासतौर पर आपको समझाने वाली है, क्योंकि अगर आपने इस काम के लिए सिर्फ अहमदी ढूंढे तो अव्वल तो आपकी ताकत थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि सारा मुल्क गरीब पड़ा है, वहां चंद आदमी सारे मुल्क की अहमदी सारे मुल्क की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे, और अगर करेंगे भी तो जमात की आलमी जरूरतों पर उसका बद असर पड़ेगा, जो अपनी जगह बहुत ही अहम है। खुदा से बंदे को मिलाना, ये बंदे का जिंदा रहना के जिंदा रहने से ज्यादा अहम है, यानी दुनिया में जिंदा रहने से ज्यादा अहम है। तो बाकी आलमी तहरीकात जो इस्लाम के तकाजे पूरी कर रही हैं, उनकी गर्दन पर छुरी फेर कर मादी जरूरियात को पूरा नहीं करना, साथ साथ पूरा करना। इसलिए इसकी मैं आपको ये तरकीब समझा रहा हूं कि जहां जहां अल्लाह तआला के फजल से खुसूसियत से मुल्क ने शराफत दिखाई है और अहमदियत में दाखिल हो रहा है, वहां उनकी तकलीफें दूर करने में एक ये कदम भी उठाएं और ऐसी तहरीकात जारी करें जिसमें उस मुल्क के बड़े लोग, साहिब हैसियत लोग, जिन बेचारों को ये नहीं पता कि उन्होंने खर्च कैसे करना है अपनी दौलत को और कैसे अपनी मजे हासिल करने हैं, आप सरबराह बने, उनको मुनज्जम करें, उनसे कहें कि तुम आगे बढ़ो और खिदमत करो अपने गरीबों की। और ये तरीक हो उसका कि हर जगह उनको साहिब हैसियत बनाओ, वो अपने पांव पर खड़े हों ताकि हमेशा उनका हाथ तुम्हारी तरफ ना बढ़े बल्कि लोगों के हाथ उनकी तरफ उठने शुरू हो जाए। ये वो जो मज़मून है, दूसरा पहलू, ये मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं। सारी दुनिया में जमातों को ये अख्तियार करना चाहिए, बराह रास्त आपको इससे फायदा नहीं पहुंचेगा लेकिन बिल वास्ता एक फायदा जरूर पहुंचेगा और जरूर पहुंचता है, क्योंकि ये बंदे जो बागैरत बंदे खुदा के बनते हैं, जो आगे लोगों की जरूरतें पूरा करते हैं, ये जब अहमदी होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद वजूद बनेंगे। तो नस्बत ही नहीं इनमें और उन लोगों में जो भेड़ बकरियों की तरह बाज दफा अपने सरदारों को अहमदी होता देखते हैं तो अहमदी हो जाते हैं। उनको संभालना जरूरी है, उनमें इंसानी कदरें पैदा करना जरूरी है, उनको तरबियत करना बड़ा लंबा काम है, तो वो काम जो बाद में करना है अभी भी कोई शुरू कर देते हैं। और इस काम में गैर आपका मददगार हो सकता है, तो इन्हीं कामों की तरफ अल्लाह ताला जब तवज्जो दिलाता है तो कुरान करीम में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाता है, कुल या अहलुल किताब ताल और इला कलिमत सवाइम बैना नवा बैना कि ए अहले किताब, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, आओ हम तुम्हें कदर मुश्तरक की तरफ बुलाते हैं। और जिस कदर की तरफ बुलाया वो तौहीद बारी ताला है, और तौहीद ही की ये तकाजे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तौहीद बारी ताला की तरफ बुलाएंगे तो खुदा के बंदों की तरफ बुलाना लाजमी हिस्सा है, वरना खुदा और बंदों के दरमियान तौहीद कायम हो ही नहीं सकती। पहले बंदों को खुदा की तौहीद की तरह बुलाएं, उनके दिलों को खालिस करें और इस तौहीद के नाम पर उनसे मदद मांगें, फिर उनको यह समझाएं कि इस तौहीद का तकाजा है कि जिसने कुल आलम के बंदे पैदा किए उनका ख्याल पैदा करने वाले की वजह से करो, उनकी खिदमत इसलिए करो कि खुदा ने इनको पैदा किया, वो इनकी जरूरतों को पूरा करने वाला है और उसने इंसान को इख्तियार बख्श दिया है कि चाहे तो करे चाहे तो ना करे, मगर अल्लाह उसी का बनेगा जो जरूरतें पूरी करेगा, क्योंकि वो खुदा के बन रहे हैं। इस पहलू से इन तहरीकात में मजहबी रंग भी दें लेकिन अहमदियत की तरफ बुलाने की जरूरत ही नहीं। इस्लाम इन्हीं बातों की तरफ बुला रहा है, इस्लाम का नाम भी नहीं देगा। किताब ताल और इलाकले में तुम सवाइन बनाना हो जाना, अहले किताब हम तुम्हें अब इसलिए नहीं बुला रहे अपनी तरफ कि अपने मजाहब को तर्क कर दो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ, हम इसलिए बुला रहे हैं कि इस्लाम का आला मकसद तौहीद का क़याम है और तुम भी यही दावा करते हो। तौहीद को कायम करो या ना करो तुम्हारी जुबान के दावे यही हैं। यहूदियत भी तौहीद का दावा करती है और ईसाइयत भी तौहीद का दावा करती है, आगे तौहीद को फाड़ें यह अलग मसला है, मगर कुरान करीम ने वहां हाथ डाला जब मुट्ठी इकट्ठी थी जब वो मुट्ठी झाड़ू के तिरके बन जाती है तो फिर फैल जाती है, फिर उसका संभालना मुश्किल हो जाता है। बस अल्लाह ताला ने हमें तरीका सिखा दिया है, इन कौमों को इस नाम पर जब आप तहरीक करेंगे कि आओ गरीबों की खिदमत में हम इकट्ठे होते हैं, तो यहां खुदाए वाहिद का नाम लेना ना भूलें, वरना आपकी ये मेहनतें फायदा तो देंगी मगर इस फायदे को ज्यादा बेहतर भी तो बनाया जा सकता है। एक ही चीज की थोड़े दामों में ज्यादा कीमत वसूल की जा सकती है, तो अपने इन कोशिशों के नतीजे में इनको भी तौहीद की तरफ बुलाएं और इनसे जो काम लें उसके नतीजे में जिन पर ये फैज जारी करें उनको भी खुदाए वाहिद का हवाला जरूर दें, हम जो तुम्हारी खातिर काम कर रहे हैं इसलिए कि तुम उसी खुदा के बंदे हो जिसके सब दुनिया वाले बंदे हैं, इसलिए कि वो पसंद करता है कि तुम्हारी खिदमत की जाए। ये एहसास अगर आप पैदा कर देंगे तो ये सारी तंजीमें ऐसी होंगी जो दिन ब दिन खुदा की तरफ ज्यादा तवज्जो देंगी, इबादत में तरक्की करेंगी और रूहानियत में तरक्की करेंगी, और इनका फैज वो है जो आपकी तरफ से पहुंचेगा और फिर आपको भी पहुंचेगा। ये फैज की अजीब बात होती है, लौट कर आया करता है। हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, कुरान करीम ने एक एक छोटी छोटी आयत में अजीम शान दायमी हिकमतों के मज़मून बयान फरमा दिए हैं। ये आयत तुम्हें बता रही है कि तुम फैज करोगे फैज फैज की खातिर, तो ये ख्याल ना करना कि वो डूब जाएगा, वो लौट कर आएगा। जिस तरह तुम शुक्र जब करते हो तो मैं भी तो उस शुक्र को लौटाता हूं, मैंने इंसान की फितरत में ये बात रख दी, ये गोया खुदा कह रहा है कि मेरे बंदो ये बात मैंने फितरत इंसानी में दाखिल कर दी है कि तुम जब उनसे एहसान का मामला करते हो तो हकीकतन उनका दिल भी चाहता है वो तुमसे एहसान का मामला करें, यानी उससे बढ़कर जिन्हें तुमने उनको दिया है। और इस तरह ये सिलसिले दराज होते चले जाते हैं। बस जो आइंदा दो तीन माह बाकी हैं इनमें खसूसियत के साथ इन नसीहतों की तरफ मुतवज्जे हों, अमीर ममालिक भी और गरीब ममालिक भी, और इस सिलसिले में बाकी बातें आइंदा इंशाल्लाह आपसे और भी करूंगा, लेकिन इस वक्त आपको खसूसियत से मुतवज्जे कर रहा हूं कि बकिया दो साल में आपने यही कमाई खानी है अपनी। जितना ज्यादा एहसान करेंगे उतना ही आप पर एहसान होगा, जितना ज्यादा शुक्र करेंगे उतना अल्लाह आप पर शुक्र करेगा, और कोई दुनिया की ताकत आपके कदम नहीं रोक सकती। ये मौलवी बेचारे क्या थे, इनकी हैसियत क्या, बड़े बोले हमें फाड़ते फाड़ते आप फटने शुरू हुए, इतना फट रहे हैं कि हैरत होती है, हर तकसीम आगे फिर तकसीम हो रही है। और वो जो दुआएं थी अल्लाह मस्जिकुम कुल्लम मस्जिकिन वसाइकुम तसीका, आंखों के सामने देख रहे हैं और इसका कोई इलाज नहीं कर सकते, फटते चले जा रहे हैं। जो खत्म नबूवत की तहरीक जिसने ऐलान किया था कि हम अब लांटे डालेंगे, वो आप फट गई, यहां आगे उनकी मस्जिदें फट गई, कहां इकट्ठे रह सके हैं ये। बस इनका फटना ही आपकी तौहीद की का निशान बन रहा है, ये फट रहे हैं आप नहीं फट रहे, इसलिए कि आपका तौहीद वाहिद खुदा की तौहीद से ताल्लुक है। ऐसे कड़े पर आपने हार डाला है कि लम फिसाम आला, उसका टूटा मुमकिन ही नहीं। बस अपने नफ्स की तौहीद की हिफाजत करें, इस तौहीद को जारी करें, अल्लाह ताला हमेशा आपको आगे से आगे बढ़ाता चला जाएगा, और इस तकदीर इलाही में कोई तब्दीली नहीं देखती है, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता करे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ